नमस्कार मित्रों, रेडियो मधुबन के पठामी संस्कृतम कार्यक्रम को लेकर मैं लीना मेहंदले पुनश्च उपस्थित हूँ। मुझे विश्वास है कि तुमने राम रक्षा स्तोत्र के राम कवच को पूरी तरह से सीख लिया होगा और आगे भी हम लोग फिर से राम रक्षा की चर्चा करेंगे ताकि तुम इस पूरे स्तोत्र को पढ़ सको, समझ सको और याद कर सको। तो मित्रों, आज की पढ़ाई के लिए मैंने दो व्यक्तियों की सहायता ली है। सहायता इस तरह कि मेरे संगणक पर मेरा एक ज्ञान स्थल है जिसका नाम है जाने संस्कृत पढ़े संस्कृत। कोई भी संस्कृत का जानकार व्यक्ति आकर के इसमें अपने अपने मत या अपनी ओर से कुछ ज्ञान की बातें लिख सकते हैं, लिखते रहते हैं। तो उसमें से दो अंश मैंने चुने हैं। एक अंश लिखा है पुणे स्थित श्री अनंत कुलकर्णी ने। इन्होंने प्रह्लाद, होलिका, हिरण्यकश्यप और नरसिंह अवतार का संदर्भ लेते हुए बहुत सुंदर लिखा है कि स्तंभे स्तंभे विद्यते श्री नृसिंह, किंतु प्रह्लाद विना बहिर् न आगच्छति। देखो कितना सरल है कि स्तंभे स्तंभे अर्थात हर खंभे में श्री नरसिंह विराजमान हैं, विद्यते विराजमान हैं, किंतु जब तक प्रह्लाद नहीं पुकारे वो बाहर नहीं आएंगे। प्रह्लाद विना बहिर् न आगच्छति। साम्प्रतम हिरण्यकश्यपः बहवः सन्ति। आजकल हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस, हिरण्यकश्यप जैसे दुष्ट लोग बहुत हो रहे हैं। वयम तेषां कोलाहलम श्रुण्मः, हम लोग उनके कोलाहल को सुनते हैं। नित्यम श्रुण्मः, नित्य प्रति सुनते हैं। उच्चैः ते गर्जन्ति, वह बड़े ऊंचे आवाज में जोर शोर से गरज गरज कर बोलते हैं। हंत न एकोपि प्रह्लादः, किंतु क्या दुर्भाग्य है कि कोई प्रह्लाद नहीं है। आगे लिखते हैं, भगवन कृपया प्रह्लादम जनय, हे भगवान कृपा करके प्रह्लाद को जन्म दो, प्रह्लाद का निर्माण करो, प्रह्लाद जन्म ले, ऐसा कुछ करो। एतत् कार्यमपि त्वयैव करणीयम्, यह काम भी तुम्ही से होना है। त्वयैव, त्वया इव, त्वयैव करणीयम् होने वाला है। काम अपि कयाधुम प्रेरयो, यहाँ पे कयाधु शब्द है। कयाधु जो कि प्रह्लाद की माता थी, हिरण्यकश्यपु की पत्नी थी। तो कुलकर्णी जी लिखते हैं भगवान को कि हे भगवान किसी कयाधु को प्रेरणा दो। काम अपि कयाधुम प्रेरय, राक्षसकुले अपि विष्णु भक्तम जनयितुम, ताकि इन राक्षसों के कुल में भी कोई प्रह्लाद जन्म ले तो फिर उस प्रह्लाद के पुकारने पर खंभे खंभे में जो आज नरसिंह विराजमान है वो बाहर आएंगे। तो कितनी सुंदर कल्पना इन्होंने की है आज के युग में फैल रहे सारे दुष्कर्मों से छुटकारा पाने के लिए, बहुत सुंदर कल्पना है। तो कुलकर्णी जी को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। अगले पाठ की ओर चलते हैं। ये जो दूसरा पाठ मैंने लिया है इसे मुझे लिख करके भेजा है श्री राधेश्याम पोद्दार जी ने, और इन्होंने भी बहुत सुंदरता से और बहुत सरलता से जो शिव का जाप मंत्र है ओम नमः शिवाय, इस शिव के जाप मंत्र को उन्होंने माध्यम बनाया है और कुछ इस प्रकार श्लोकों की रचना की है कि शिव जाप मंत्र के हर एक अक्षर को आधार बना करके एक श्लोक है, और उस आधार के कारण अंत में उस अक्षर को नमन किया गया है। तो अद्भुत है हमारी भाषा संस्कृत और अद्भुत है इसके संस्कार जिसमें एक अक्षर को भी नमस्कार का पात्र माना गया है। नरसिंह की कहानी के कारण हर खंभा अब नमस्कार का पात्र हो गया है, तो दूसरी ओर पोद्दार जी के इस श्लोक के कारण देखो अक्षर भी नमस्कार के पात्र किस प्रकार उन्होंने बताए हैं। श्लोक वो लिखते हैं, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मतलब जो भी योगी पुरुष हैं नित्यम ध्यायन्ति, वो शिव जी को नित्य प्रति उनका ध्यान करते हैं और उनके रूप की कल्पना करते समय उनके रूप में ओंकार बिंदु को अंतर्भूत करते हैं। तो ऐसा जो ओंकार बिंदु है उसको धारण करने वाले शिव, जो कामदम अर्थात सारी कामनाओं को पूरा करने वाले, मोक्षदम चैव और मोक्ष को भी देने वाले हैं, अतः ओंकाराय नमो नमः। तो चूंकि शिवजी में यह ओम अंतर्भूत है तो ऐसा ओम जो है उसको मैं नमस्कार करती हूँ, उससे नमस्कार है। आगे लिखते हैं, नमन्ते ऋषयो देवाः नमन्त्यप्सर सामगणाः नराः नमन्ति देवेशम नकाराय नमो नमः। इसमें भगवान शंकर का वर्णन किया गया है कि उन्हें कौन कौन नमस्कार करता है। तो ऋषि और देवतागण, अप्सरागण और जो सामगान गाने वाले हैं वो सभी देवेश अर्थात शिव को नमन करते हैं, और मनुष्य जो हैं वो भी देवेश को नमन करते हैं। तो इस प्रकार ये जो न है उस न को मेरा नमस्कार है। महादेवम महात्मानम महाध्यान परायणम महापापहरम देवम मकाराय नमो नमः। अब यहाँ पर शिवजी के नाम गिनाए हैं जो म से शुरू होते हैं। वो महादेव है, महात्मा है, महाध्यान परायणम मतलब वह ऐसी महत्तम शक्ति है, वह ऐसे महत्तम देवता है जिनका ध्यान किया जाता है। महापापहरम सारे पापों को वो दूर करने वाले हैं। तो फिर इन सारे उनके शिवजी के म से आरंभ होने वाले नाम हैं, उनके कारण म अक्षर को भी नमस्कार है। शिवम शांतम आशुतोषम लोकानुग्रह कारकम शिवम एक पदम नित्यम शिकाराय नमो नमः। अब ये शि अक्षर को भी नमस्कार है क्योंकि इसी अक्षर से शिवजी का नाम आता है जो शांत है, आशुतोष हैं अर्थात थोड़ी ही प्रार्थना से खुश हो जाते हैं और लोगों पर अनुग्रह करते हैं। तो ऐसे शिव के पद को, शिव के स्थान को हम नित्य स्मरण करते हैं, इस कारण से इस शि अक्षर को भी नमस्कार है। आगे लिखते हैं, वाहनम वृषभम यस्य अर्थात जिसका वाहन वृषभ अर्थात नंदी है, वासुकी कंठभूषणम और उनके कंठ का आभूषण, उनके गले में आभूषण के तौर पर वासुकी नाग पड़ा हुआ है, वामे शक्तिधरम देवम उनके बाईं ओर शक्ति अर्थात दुर्गा अर्थात पार्वती बैठी हुई हैं, ऐसे ये महादेव हैं। तो इनका वर्णन करने वाले इस वा अक्षर को भी नमस्कार है। यत्र तत्र स्थितो देवः सर्वव्यापी महेश्वरः, ये महेश्वर जो है वो यहाँ है, वहाँ है और सर्वत्र है, सर्वव्यापी हैं, तो ऐसे ये महेश्वर हैं। यो गुरुः सर्वदेवानाम, ये सारे देवों के गुरु भी हैं। तो इनका वर्णन करने वाले इस य अक्षर को, यकाराय नमो नमः, इस य अक्षर को भी नमस्कार है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये याद रखना कि ये हमारी संस्कृति जो है वो चर अचर में ईश्वर का निवास है ऐसा मानती है। तो केवल चर और अचर जो हमें दिखता है वही नहीं, किंतु जो हमारे अक्षर हैं, जो हमारी वर्णमाला है, इनकी भी एक पर्सनैलिटी है, इनकी भी अपनी एक पहचान है और उस पहचान को भी नमस्कार करने वाली हमारी संस्कृति है। तो मित्रों, मुझे विश्वास है कि श्री पोद्दार जी और श्री कुलकर्णी जी के भेजे हुए इन पाठों को तुमने बहुत आनंद से सुना होगा। तो हम इन दोनों को धन्यवाद करते हैं आज के हमारे इस पाठ के लिए। और आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। तुम सुनते रहना पठामी संस्कृतम, सुनते रहना रेडियो मधुबन, हमें SMS भेजते रहना 94-14-15-14-15 पर, और मुस्कुराते रहना। नमस्कार।